ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण सातवां स्कंध अध्याय 15। इसका नाम है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, श्लोक संख्या 75, 76 और 77। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है श्लोक संख्या 76। वा अयम् ब्रह्मा महद्मृगयः महद्विमृगयः कैवल्यनिर्वाणसुख अनुभूति प्रियः श्रुता वा खलु मातुलेयः आत्मा अरहणीय विधिकृता गुरुः च सवायं ब्रह्म महद्विमृग्य सवायं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रियाश्रिद्वा खलु मातुलेया आत्मारहणीयो विधिकृतगुरुश्च सवायं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवाल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रियाश्रिद्धा खलु मातुलेया आत्मरहणीयो विधिकृत गुरुश्च एक सेकेंड। आप तो हिंदी जानते हो ना, आगे आ जाओ, इधर चला गया, पता नहीं ऐसे जा रहा है कतार, इधर खाली पड़ा हुआ है, आओ जाओ। बिल्कुल जो लेट आने वाले हैं उनको पीछे रहने दो ना। पढ़ो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान व या तो अयम य कृष्ण ब्रह्मा परम ब्रह्म महत्मृग्य बड़े बड़े संत पुरुष द्वारा खोजे जाने वाले कैवल्य निर्वाण सुख मोक्ष तथा दिव्य आनंद के अनुभूति ही साक्षात्कार के लिए प्रिय सुहृत शुभचिंतक व तुम सारे पांडवों खलु के रूप में प्रसिद्ध या निसंदेह मातुलेय मामा का पुत्र ममेरा भाई आत्मा हृदय तथा आत्मा अहरणीय अत्यंत पूजनीय विधिकृत निर्देश देते गुरु तुम्हारा गुरु च और अनुवाद। यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे परब्रह्म कृष्ण जिन्हें बड़े बड़े मुनि अपनी मुक्ति तथा शाश्वत आनंद प्राप्ति के लिए ढूंढते रहते हैं, तुम्हारे श्रेष्ठ शुभचिंतक मित्र ममेरे भाई आत्मा पूज्य निर्देशक तथा गुरु की भांति कार्य कर रहे हैं। तात्पर्य, कृष्ण ऐसे किसी भी व्यक्ति के निर्देशक तथा गुरु बन सकते हैं जो उनकी कृपा पाने के लिए गंभीर हो। भगवान गुरु को इसलिए भेजते हैं कि वह भक्त को प्रशिक्षित करे। जब भक्त प्रगत हो जाए तो भगवान उनके हृदय में रहकर गुरु की भांति कार्य करें। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मापयन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि देता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जब तक कोई भगवान के प्रतिनिधि गुरु द्वारा पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हो जाता तब तक कृष्ण किसी के साक्षात गुरु नहीं बनते। अतएव जैसा कि हम पहले ही बतला चुके हैं कि भगवान के प्रतिनिधि गुरु को कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। प्रतिनिधि गुरु कभी अपने चित्त को असत्य ज्ञान नहीं देता, वह केवल पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। इस तरह वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। कृष्ण भीतर तथा बाहर से गुरु की भांति सहायता करते हैं। बाहर से वे प्रतिनिधि बनकर और भीतर से साक्षात रूप में शुद्ध भक्त से बातें करते हैं और उसे उपदेश देते हैं जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अपने मेमोरी को फ्रेश करने के लिए ये जो सातवां स्कंद है, इस स्कंद में टोटल 15 अध्याय हैं। इस स्कंद को भागवत के विषयों का जब सुखदेव गोस्वामी निरूपण कर रहे थे तो इस अध्याय को वे बतलाए कि यह अध्याय जो है वह ऊतय। ऊतय या उति का अर्थ क्या होता है यह जानना चाहिए। उतयः कर्म वासना, कर्म करने की वासना को उति कहा जाता है। जब तक से वासना न हो तब तक से व्यक्ति कोई कर्म नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग यहां कथा सुन रहे हैं, जब तक से कथा सुनने की वासना न हो तो यहां बैठे रहकर भी कथा नहीं सुन सकते हो। कुछ समय के बाद, एक घंटे के बाद प्रसाद हाल में सब लोग जाएंगे, जाएंगे ना। तो जब भूख की वासना नहीं रहेगी, पेट भरा रहेगा तो कोई खाएगा नहीं। तो वासना बहुत जरूरी है। वासना खराब नहीं है, लेकिन जो चूंकि जीव जो है वो देहबद्ध है, वो देही है, तो अहमता और ममता के चलते इस झंझट में फंस करके जीव की वासना जो है वो दूषित हो चुकी है। दूषित वासना को, दूषित वासना के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। भगवान को समझने के लिए शुद्ध वासना चाहिए। तो शुद्ध वासना कैसे होती है, वासना की शुद्धि कैसे होती है, वह है नियम कानून को पालन करने से, धर्म का अनुसरण करने से। तो इस सातवें स्कंध का अंतिम अध्याय है और इस अंतिम अध्याय का प्रायः यह अंतिम श्लोक है। इसको हम यही छोड़ते हैं, वासना को शुद्ध करने का जो है, लेकिन इसका हम सारांश। एक कथा प्रारंभ हुआ, प्रसंग है राशुय यज्ञ का, यहां पर सब लोग एकत्रित थे और भगवान जब शिशुपाल को मारे और शिशुपाल भगवान के चरणों में प्रवेश कर गया, भगवान के चरणों में प्रवेश कर करके साजिज्य को प्राप्त किया, तब युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ कि यह शिशुपाल जो भगवान का द्वेषी था, पानी पी पी करके भगवान को गाली देता था, और इसको वह गति मिल गई जो कि बड़े बड़े महात्मा गण भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पापी को ही मिल गई, ऐसे कैसे। वहीं से ये कथा प्रारंभ हुआ। तब और युधिष्ठिर महाराज यह प्रश्न किए थे नारद जी से, नारद जी उपसंहार कर रहे हैं, ये जो श्लोक है ये नारद जी के मंतव्य का उपसंहार है। इस अध्याय में युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न किए, इसके प्रारंभ में ही प्रश्न किए, बल्कि इसके पहले अध्याय 14वें अध्याय में जब वर्णाश्रम धर्म का निरूपण नारद जी कर लिए, तब वे प्रश्न किए, गृहस्थम एताम पदवी विधिनाम जेन चांजसा याति देवरिषे ब्रूहि मा दृशो गृहमुद्धदी। विधिनाम जेन चांजसा, यानी कौन सा सरल तरीका है जिस विधि विधान से हम लोग भी उस गति को प्राप्त कर सकें जिस गति को ये सन्यासी ब्रह्मचारी प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए इस अध्याय के श्लोक संख्या 74 में नारद जी कहते हैं, धर्मते गृहमेधियो वर्णितं पापनाशनम गृहस्थो जेन पदवी अन्यसा न्यासनामियात। धर्म त्रेह गृहमेधियो वर्णितं पापनाशनम, मैं सबके लिए, अपने को गृहमेधी आप कह रहे हैं ना, आप लोगों के लिए भी मैं धर्म का निरूपण किया हूं, जो धर्म पाप को नष्ट करेगा। गृहस्थो जेन पदवी अंजसाम न्यासिनाम याद, जिस पद को सन्यासी लोग प्राप्त करते हैं उसी पद को गृहस्थ भी प्राप्त कर सकते हैं इस धर्म का पालन कर कर करके। लेकिन धर्म क्या है जो पहले बताया गया है, तो जैसा कि मैं बताया, अब हम आते हैं वासना पर। वासना की शुद्धि बहुत जरूरी है और वासना की शुद्धि होती है धर्म का पालन करने के। तो सातवां स्कंध जो है वह उतय है, आठवां स्कंध जो है वह है मनवंतर, और मनवंतर का अर्थ होता है सद्धर्म। धर्म किसे कहते हैं? प्रभुपाद जी अनुवादित किए हैं, धर्म का मतलब होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटी। प्रिस्क्राइब ड्यूटी, हम लोगों का कर्तव्य क्या है? जब हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो जो फल है उसकी प्राप्ति हो सकती है। फल है कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के का सेवा करना या कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, और यह तब संभव होगा जब हमारी वासना शुद्ध होगी। हमारी अशुद्ध वासना और कृष्ण के बीच में एक पर्दा है, एक काम है, और वह है धर्म। उसे कहते हैं सब धर्म, धर्म का पालन करने से। धर्म को हम कह सकते हैं जैसे विज्ञान है। विज्ञान जानते हैं आप लोग, साइंस। साइंस का डिफिनेशन क्या है? साइंस का डिफिनेशन क्या है? सब साइंसिस होने यहां पर। साइंस का डिफिनेशन क्या है? टू नो थिंग्स एज दे आर, राइट। वस्तुओं के सम्यक ज्ञान को जो बतलाता है वह कहलाता है साइंस। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स साइंस है। वह किस वस्तु का ज्ञान दिलाता है? फिजिक्स एक साइंस है मैटर का। केमिस्ट्री एक साइंस है, वो किसे ज्ञान दिलाता है? केमिकल साइंस। गणित एक साइंस है, वो किसे ज्ञान देता है? यह गणित वाला है नंबर्स। बायोलॉजी एक साइंस है, वो किसे ज्ञान दिलाता है? तो वैसे ही धर्म एक साइंस है जो ज्ञान दिलाता है किसका? भगवान का, कृष्ण के विषय में। इसलिए दसम स्कंद जब, नवा स्कंद जब शुरू हुआ है, नवा स्कंद को कहा गया है ईशानुकथा। ईश मतलब भगवान और अनु मतलब उनके भक्त। भगवान अकेले कभी नहीं रहते हैं। इनफैक्ट जब भक्त लोग पहले होते हैं तो भगवान अपने को साथ रखना चाहते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी दो दिन पहले मैं पढ़ा था कोट प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहे कि हम कहते हैं राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो पहले राधा रानी और बाद में कृष्ण। कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं जब राधा रानी पहले हो, क्योंकि राधा रानी कौन है? भगवान की सबसे बड़ी सेवक है। तो भगवान के सेवकों को प्रसन्न किया जाए तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए दसम स्कंद में के प्रारंभ में ही परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं सोम सूर्यो, ये दो वंशों का वर्णन कीजिए, चंद्रवंश और सूर्य वंश का। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत महान भक्त लोग आए हुए हैं। तो ये तीन स्कंद, सात, आठ और नौ, ये दसवां स्कंद को जानने का प्रिपरेशन है। सातवां स्कंद जो है वो तो आठवां और नौवां स्कंद। आठवां स्कंद जो है वह क्लियर करता है, वासना को शुद्ध करता है, और नौवां स्कंद में जब वासना शुद्ध हो जाएगी तब हम भगवान के भक्तों को अप्रिशिएट करेंगे, नहीं तो हम एनवियस बने रहेंगे, कुछ न कुछ अवगुण निकालते रहेंगे, क्योंकि हमारी वासनाएं जो है वह दूषित है। शुद्ध वासना से हम अवगुण नहीं निकालेंगे, केवल गुण ही देखेंगे, और शुद्ध वासना तब होगी जब भगवान के शुद्ध भक्तों और भगवान की लीला कथाओं को सुना जाए तब। तो नौ स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। तो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का नारद जी उत्तर देकर के उपसंहार किए। देखिए वहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, सब लोग हैं, यहां तक कि भगवान कृष्ण ही वहां बैठे हुए हैं जहां प्रवचन हो रहा है। और सबके सामने भगवान कृष्ण का भेद खोल रहे हैं मानो नारद जी। ये जो तीन श्लोक है, इन तीन श्लोकों में जो बात कही गई है वो सुनिए। जो यम निर्लोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भियंती एसाम गृहान वसति साक्षात गुड परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम सवायम ब्रह्म महद्विवृज्ञ कैवाल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय श्रीद्वा खलु मातुलेय आत्महणीय विधिकृत गुरुश्च नयस्य साक्षात् वहत पद्मजादि रूपम धिया बस्तोपवर्णित मौनेन भक्तो उपसमेन पूजित प्रासीदतामेह सात्वतां पति। यहां पर कृष्ण का गुणानुवाद करते हैं। पहले तो पांडवों के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। यूयम निर्लोके बतभूरी भागा, इस मनुष्य लोक में हे पांडवगण, मानो नारद जी बिल्कुल गदगद हो गए हैं। मैंने ये पहला बार नहीं है कि नारद जी पांडवों के संगति से गदगद हुए हैं, ऐसे कई एक अवसर आए हुए हैं। जय श्री श्री गौर नित्याय की जय, राधास बिहारी की जय, श्रीरामचंद्र उनका जय। पांडवों के सौभाग्य का वर्णन करते हैं यहां पर नारद जी, कहते भूरी भागा, भूरी जिसे भूरी दाजना है, भूरी दाजना भागवत में आया हुआ सब, वैसे ही भूरी भागा यानी प्रशंसनीय है, पूजनीय है आप लोग। लोकम पुनानाम, तीनों लोगों को पवित्र करने के लिए, मुनयो अभियंती, तीनों लोग को पवित्र करते हुए मुनि लोग परिभ्रमण करते हैं, और सबको पवित्र करने वाले आज साक्षात परब्रह्म भगवान मनुष्य लिंगम मनुष्य देह धारण कर करके आप लोगों के घर में निवास करते हैं। कितना सौभाग्य है आप पांडवों का कि आपके घर में भगवान निवास करते हैं परम ब्रह्मा। तुम्हारा ज्योतिषी महाराज देखने लगे कहां है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो पर ब्रह्म कौन है? क्योंकि कृष्ण को ये लोग हमेशा अपने भाई के समान मानते थे, मित्र के समान मानते थे इत्यादि। अर्जुन भगवत गीता के 11वें अध्याय में आप देखेंगे कि जब विश्व रूप का दर्शन किए अर्जुन, भगवान के स्वर्ग का दर्शन किए, तो पश्चाताप करने लगे, हाय हाय ये भगवान है, मैंने बहुत गलती कर दिया, ان کے ساتھ میں ایک ہی سیاح پر سویا، ایک ساتھ ہم لوگوں نے کھایا، میں نے کیا کیا نہیں کیا. تو بھگوان دیکھے کہ ہمارے پریم میں گڑبڑ ہو رہا ہے، تو اس ایشورج کو چھپا دیے. حالانکہ پانڈو انہوں نے جانتے ہوئے بھی، لیکن جب ڈیلنگ ہوتا تھا تو اس سمے بھگوان ایشورج کو چھپا دیا کرتے تھے. تو یہاں پر مانو جیسے ہی مہاراج دیکھ رہے ہیں کہ بھگوان ہے، ہمارے گھر میں نواس کرتے ہیں، کہاں پر ہیں، تب ان کے سنسے کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ڈائریکٹلی کرشن کو سمبودھت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں سوبا ایم، ایم مطلب یہ ویکتی جو سامنے تمہارے بیٹھا ہوا ہے، ایم ایم مطلب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سوبا ایم برہما، ارے وہ جو پرم برہم ہے وہ کہیں اور نہیں ہے یدھشٹھیر، وہ تو یہی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ایم. پہلے کہتے ہیں سکشات برہما گڈھم پرم برہم منوش لنگم، چھپ کر کے یہاں پر ہیں، منوش اوتار میں آئے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں اپنے کو. تو جس کو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ یہیں پر ہیں، ایم برہما، یہی کرشن جو ہیں. ایم شبد کا ارتھ یہاں پر پربھاجان سے کرشن، تو ایم یہ جو کرشن ہیں یہ سکشات یہیں پر ہیں، جن کو مہد برمیگیم، مرگیا مطلب دوڑنا، مرگا مرگ ہوتے ہیں نا دوڑتے ہیں، تو مرگیا مطلب دوڑنا، دوڑنے کے چلتے ان کا نام پڑا ہے مرگیا، بہت تیز دوڑتے ہیں مرگ. تو بی مرگیا مطلب دوڑتے ہیں، سنسارک لوگ بھی دوڑتے ہیں، وہ بھی دوڑتے ہیں روٹی کپڑا مکان کے لیے. یہاں مرگیا کہہ دیا ہوتا تو ابھی کام چل جاتا، لیکن تھوڑا سندے ہو سکتا تھا. اس لیے نارد کہتے ہیں بی مرگیا، مہدا مرگیا نہیں بی مرگیا، وشیش روپ سے وشیش کارن سے دوڑتے ہیں، بنا کارن کے نہیں دوڑتے ہیں. آشرم سے دوڑ کر سب آ رہے، کہاں بھاگ رہے ہیں سب لوگ، منگل آرتی کے لیے آ رہے ہیں، کوئی کارن ہے. تو جو مہد لوگ دوڑتے ہیں وہی وشیش کارن کے لیے دوڑتے ہیں، کس کارن کے لیے، ایم برہما، جو پر برہم سے کرشن ہیں ان کی پراپتی کے لیے، ان کی کھوج میں جو دوڑتے رہتے ہیں. کیول نروان سکھانوبھوتی، اور اس پرکار سے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آنند کی پراپتی کرشن سے ہی ہے، سنسار اور سنسارک وستوؤں سے آنند کی پراپتی نہیں ہو سکتی ہے، آنند کی پراپتی کرشن سے ہو سکتی ہے، کہ کرشن ہی سچیدانند سوروپ ہیں، آنند ان میں ہی ہے. تو کیول نرمان سکھا انوبھوتی، اس کا انوبھوتی پراپت کرنے کے لیے، اس کا ساکشاتکار کرنے کے لیے وہ ان کرشن کو ڈھونڈتے رہے ہیں جو کہ تمہارے پاس ہیں آج. اور وہ کیا کرتے ہیں، پریا سہرد خلوما تلے، یہ جو کرشن ہیں یہ تمہارے شبھ چنتک ہیں، متر ہیں، ممیرے بھائی ہیں، آتما ہیں، پوج نردیشک تھا گرو، سب کچھ کرشن ہیں. دیکھا جائے تو پانڈووں کے آتما کرشن ہی تھے، پانڈووں کے گرو کرشن ہی تھے، پانڈووں کے رکشک کرشن ہی تھے. بھشم پتامہ اسی باتوں کو پرتھم اسکند کے نویں ادھیائے میں اس کا ورنن کیا گیا ہے، جو پانڈوگان کرشن دھوم اتیادی کے ساتھ میں پہنچے ہیں کروکشیتر کے میدان میں، جہاں پر پتاما بھیشم سر سیا پر پڑے ہوئے ہیں، پربت، نارد، دھوم، ویاس دیو، بھردواج، پرشورام سب کے ساتھ میں وہاں پر پہنچے ہوئے. جب پتاما بھیشم پانڈووں کو دیکھے، یہ پہنچے اور پہنچ کر کے پتاما بھیشم کے چرنوں کی طرف کھڑا ہوئے، शिष्टाचार यही कहता है। युधिष्ठिर महाराज तो इतने अधीर थे, इसके पहले अध्याय आठवें अध्याय में बताया गया है, वो तो आत्महत्या करने वाले थे। इतने उनमें ग्लानी उत्पन्न हुई थी कि मेरे चलते कितना बड़ा पाप हुआ, कितने लोग मारे गए, क्या क्या नहीं हुआ, सब मेरे मुझे राजा बनाने के लिए, बस एक काम के लिए, मैं सब कुछ का कारण हूं। तो वे जैसे ही पितामह भीष्म को देखे, अब सब कुछ याद आ गया, अर्जुन को सब कुछ आ गया, कुंती को सब कुछ याद आ गया, द्रौपदी को सब कुछ याद आ गया, जो भी डीलिंग पितामह भीष्म के साथ हुई थी। अर्जुन युधिष्ठिर पितामह भीष्म के चरणों को पकड़कर लगे रोने। जब रो रहे थे, पितामह भीष्म ध्यान किए हुए थे, आंख बंद किए थे, उनकी एक ही कामना थी कि मृत्यु के समय भगवान का मुझे दर्शन हो। अब भगवान उनके कामना को पूरा करने के लिए, उनको उनका कामना पूरा करो, भगवान उनके कामना को पूरा करने के लिए वहां पर आए हुए हैं। जब युधिष्ठिर आदि रो रहे थे तो उनके आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे, मानो भीष्म पितामह का पद प्रक्षालन कर रहे हों, उनका चरण धो रहे हो। आप लोग जानते हैं, अनुभव होगा कि सुख के आंसू होते हैं वो शीतल होते हैं, और दुख के जो आंसू होते हैं वो बड़े गर्म होते हैं। पितामह भीष्म ध्यान मग्न थे, कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, और उनके पैर पर एक दो लीटर गर्म पानी को डाल दे, ऐसे ही हुआ। तो जब आंख खोले, यहां वर्णन किया कि दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे पांडवगण, जब आंख खोले तो देखे पांडवों को, और पांडवों को देख करके एक बार पितामह भीष्म भी बड़े इमोशनल हो गए, उनके आंखों से भी आंसू आया। यहां युधिष्ठिर महाराज जो कि कातर हैं, बड़े दुखी हैं कि मेरे चलते ये हुआ, लेकिन इधर पितामह भीष्म कहे कि हे पांडव, तुम लोग तो निर्दोष थे, तुम लोगों पर तो अत्याचार किया गया, तुम लोगों को तो दुख दिया गया, लो इधर ये समझते हैं कि हमारा गलती है, और वो कहते हैं तुम्हारा गलती नहीं, गलती हम लोगों का है, कौरवों का गलती है। और यही जो बात था, युधिष्ठिर महाराज को संतावना दिया, और भगवान जानते थे कैसे होगा, इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यम धर्म नंदना जीवितिम नाथ क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रय। कहते हाय हाय, हे पांडवों, तुम लोगों को कितना कष्ट नहीं सहना पड़ा, कितना तुम पर अन्याय नहीं हुआ, यम धर्म नंदना, तुम धर्म के पुत्र हो, तुम धर्मनिष्ठ हो, तुम धर्म में ही आनंद लेने वाले हो, तुम लोग अधार्मिक नहीं लोग हो, अधार्मिक को दुख हो ठीक है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति को दुख हो। प्रायः लोग हम लोगों से पूछते हैं कि हमने तो कोई अब तक से गलती नहीं की अपने होश हवास में, हम पर इतना दुख क्यों हो रहा है, या वह व्यक्ति बड़ा सज्जन व्यक्ति है उस पर दुख क्यों हो रहा है। तो उन लोगों को उत्तर देने के लिए हम लोगों को चाहिए ये भीष्म पितामह का श्लोक याद रखना और कोट करना। पितामह जो महाजन है वे कहते हैं, यम यम धर्म नंदना, तुम लोग धर्म के संतान हो, तुम लोग धर्म के पालन करने वाले हो, तो धर्म के में ही आनंद लेने वाले हो, तुम लोगों पर इतना कष्ट हो सका, अरे इतने कष्ट में कोई जी नहीं सकता था, लेकिन तुम लोग जीवित हो, पता है क्यों जीवित हो, तीन कारण बता रहे हैं। कहते हैं, विप्र धर्म अच्युताश्रय, तुम लोग विप्र धर्म और अच्युत के आश्रय में रहे हो। तो जो व्यक्ति वैष्णव के आश्रय में रहेगा, धर्म के आश्रय में रहेगा और कृष्ण के आश्रय में रहेगा, उसका कोई भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हजार विपत्तियां क्यों ना आए, लेकिन वो विपत्तियां उनको नष्ट नहीं कर सकती है। यही बात पितामह भीष्म पांडवों को कहे। अब जब पितामह भीष्म का दृष्टि माता कुंती पर पड़ी तो कुंती को देख करके रो पड़े। कहते हैं संस्थिते अतिरथे पांडु पृथा बाल प्रजावधु। जब पांडु का देहांत हो गया, यह पृथा तुम लोगों के चलते जीवित रही, तुम लोगों के लिए यह जीवित है, और तुम लोगों ने इसे दिया ही क्या, तू अपने दुख के लिए सोच रहे हो? कभी इस प्रथा के दुख के विषय में सोचा? इसने क्या दुख सहा? जुष्मन कृते बहुत बहुम क्लेशा, तुम लोगों ने इसे बहुत सा क्लेश दिया, लेकिन इसने कभी कंप्लेन नहीं किया। यही है मां का हृदय। मां पर कितना भी दुख हो लेकिन मां कभी कंप्लेन नहीं करती है। हम लोगों को थोड़ा भी दुख हो जाता है तो हम लोग रोना शुरू करते हैं। इसीलिए मां के कर्ज को कोई नहीं चुका सकता है। पितामह भीष्म जो एक महाजन है, वे कह रहे हैं कि बेचारे चुपचाप तुम्हारे द्वारा दिए गए क्लेश को सहन की है। फिर समझा रहे हैं कोई बात नहीं, ये सब काल का ये है, काल के चलते सब हुआ। एनीवे मैं पूरा उसमें नहीं जाना चाहूंगा। जो असली बात है यहां पर अयम शब्द है, उसी अयम शब्द का वैसा ही अयम शब्द यहां पर पितामह भीष्म के हैं। कहते हैं एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान। एष यहां पर अयम शब्द आया हुआ है, वहां पर एष शब्द कहे हैं। दोनों का एक ही अर्थ है। एष जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे बीच में हैं, वही इसमें कोई दो राय नहीं है, वे निस्संदेह हैं। क्या हैं? भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान हैं कृष्ण, जो तुम्हारे साथ आए हुए हैं। नारायण अपमान मोह माया लोके गुढ़ चरति विष्णुसु। अपने को अपनी ही माया से ढक कर करके और तुम विष्णुवंशियों के बीच में ये रह रहे हैं। और यहां पर वैसा ही कहा गया है कि मनुष्य लिंगम गूढ़ मनुष्य लिंगम, और यहां पर वही आया शब्द आया हुआ है गूढ़ चरति विष्णुसु। तुम विष्णुवंशियों के बीच में छिप करके छद्म रूप में साक्षात पर ब्रह्म नारायण रह रहे हैं। कहते इनके स्वभाव के इनके प्रभाव को कोई नहीं जान सकता है। इसके आगे वाला श्लोक जो है वो उसका वर्णन यहां पर किए हैं पितामह भीष्म ने। यस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतम शिवम देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। ये छिपे हुए हैं, अपने को छिपाए हैं लेकिन छिपाए नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इनको जानते हैं, जैसे देवर्षि नारद हैं, भगवान कपिल इत्यादि जानते हैं। और वही पर ब्रह्म, अब इस श्लोक के नीचे वाला श्लोक, वही पर ब्रह्म जो गुड़ रूप में तुम लोगों के बीच में रह रहे हैं, तुम लोगों के लिए क्या नहीं किए? यम मन्यसे मातुलेयम प्रिय मित्र सुहृततम। जिसको तुम अपना ममेरा भाई मानते हो, जिनको तुम अपना प्रिय मित्र मानते हो, सुहृद मानते हो, कहते अकरो इसका व्याख्या नहीं करूंगा लेकिन कहता हूं इसका अर्थ केवल अकरो, जो नहीं करना चाहिए वो अभी इन्होंने किया। क्या क्या किया? सचिवम सचिव का काम किया, दूतम दूत का काम किया, सौहार्द अथ सारथी सुहृद का काम किया, और साथ में सारथी तक का काम किया। और वही बात यहां पर कहा गया है, प्रियम सुहृदम खलु मातलेयम आत्मरहणीयो विधिकृत गुरुश्च। क्या क्या काम कृष्ण ने किया। ठीक ऐसा ही एक प्रसंग आया हुआ है बृहद भागवतामृत में। यही नारद जी, पुनः नारद जी इस पृथ्वी पर कोई कौन सबसे महान भक्त है, उस महान भक्त को खोजने निकले थे। किसी ने कह दिया कि हनुमान जी सबसे महान भक्त है, अब कहना क्या था। वहां जाकर के हनुमान जी को सस्तांग दंडवत किए नारद जी, और हनुमान का गुणानुवाद करने लगे। खूब हनुमान का गुणगान किए कि आपने प्रभु श्री राम के लिए क्या नहीं किया, आप उनके दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वज, छत्र, पंखा, बंदी, मंत्री, वैद्य, सेनापति, और क्या क्या काम आपने नहीं किया भगवान श्री राम के लिए। हे हनुमान जी आप बहुत धन्य हैं, आप बहुत धन्य हैं, आपके समान कोई धन्य नहीं है। जब इस प्रकार से हनुमान जी का गुणानुवाद नारद जी कर रहे थे, तो यह जो गुण था, हनुमान जी ऐसे भी बृहाग्नि में तप्त थे, बृहाग्नि में जल रहे थे राम के विरह में, और जब उनके गुणों का वर्णन बखान कर रहे थे नारद जी, तो मानो इस अग्नि में फ्यूल का काम करने लगा यह बखान। और हनुमान जी लगे रोने, छोटे बालक के समान झरझर झरझर उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, और नारद जी रोने लगे। और नारद जी ने कहा, सॉरी हनुमान जी रोने लगे, नारद जी संतावना दिए, बढ़ाए बधाए। यहां पर कहा गया है, प्रदीपितादो विरहाग्नि तप्तो रुदन सुचार्थो मुनिना सांत्वितः। विरहाग्नि तप्तो रुदन, रोना शुरू किए, और उनके शोक को बाद में नारद जी संतावना देकर के शांत किए, बंद किए। तब अपने को संभाल करके हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे सौभाग्यशाली कहते हैं, सौभाग्यशाली नहीं हूं, सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मैं हूं कि प्रभु श्री राम ने सुग्रीव आदि सबको लेकर के इस धराधाम से चले गए, समस्त साकेत वासियों को लेकर चले गए, लेकिन मुझको यहीं छोड़ दिए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। खैर कोई बात नहीं, आप यदि सही में शुद्ध भक्तों का को खोज रहे हैं, तो आज हमारे प्रभु श्री राम इस धराधाम पर आए हुए हैं, वे द्वारिका में निवास करते हैं, और इस प्रकार से भगवान के भक्तों के विषय में सोचते 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 कहते हैं, मुझ पर वह कृपा वे नहीं किए, कृतस्यानुग्रहस्य अंशंस्य पांडेषु महात्मसि तुल्यार्तति नो गन्तुं सुमेरु मृद ऋणीयथा। कहते हैं जो कृपा भगवान पांडवों पर किए हैं, उनकी तुलना में हमारे ऊपर तो एक अंश भी तुलना नहीं किए हैं। उनके प्रति जो कृपा है वह सुमेरु पर्वत के समान है, और मेरे ऊपर जो तुलना कृपा भगवान का है एक छोटा मिट्टी के समान। हरि बोल कुर्सी तोड़, हरि बोल कुर्सी तोड़। आपको नहीं, दूसरा एक और है। तो इस प्रकार से पांडवों का अब गुणगान करना शुरू किए। तो मैं पांडवों का गुणगान करूंगा कि कैसे वे कृष्ण के प्रिय हैं, और उसके बाद कथा समाप्त होगी। स एषाम् वा वाल्यः तत्तत् विषादाग्नपद्गणे रतात् धौर्यम धर्म यशो ज्ञानम भक्ति प्रेमापि दर्शयात्। कहते भगवान ने पांडवों को सब प्रकार से रक्षा किया, विष में उनका रक्षा किया, उनके धौर्य जश ज्ञान भक्ति और प्रेम सबको संसार में प्रकाशित किया। प्रेमाप्य दर्शयत, प्रेम को प्रकाशित किया कि मैं पांडवों के प्रति कितना प्यार करता हूं, गोपियों के प्रति कितना प्यार करता हूं, उसको प्रकाशित नहीं कृष्ण किए जितना कि पांडवों के प्रति अपने प्यार को प्रकाशित किए। तो मानो नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या प्रमाण है आपके पास कि पांडवों के प्रति उन्होंने इतना प्रेम प्रकाशित किया, क्या उसका प्रमाण है? तो उस प्रमाण को दे रहे हैं जो कि नीचे का दो श्लोक है, उसको यही बात वहां कहते हैं सारथ्यम। एक अकम प्रमाण है कि अर्जुन का वे सारथी बने। पार्षदत्वम, पार्षद बने। सेवनम, सेवा किए। मंत्री, जब भी कुछ सलाह चाहिए था तो कृष्ण से पूछते थे। दूत एते, दूत बने। और क्या क्या नहीं किए? अरे वो तो छोड़िए, उन लोगों का रक्षा कर रहे थे। कैसे? विरासना, विरासन पर बैठ करके उन लोगों का रक्षा कर रहे थे। अनुगमने, उनके पीछे आगे युधिष्ठिर महाराज चल रहे थे और भीम चल रहे थे, उसके पीछे अर्जुन और कृष्ण चल रहे थे। अनुगमने, उनका अनुगमन किए, एक तो यह अर्थ है, और दूसरा जो बात उन लोगों ने कहा उस बात को वे किए। च अस्तुति, और क्या क्या नहीं किए? अस्तुति किए। नयति, प्रणाम किए। इत्यादि क्या क्या नहीं किए? यानी वे सब कुछ किए, और उतना से जब पेट नहीं भरा, क्योंकि वे पांडवों के बिना रह नहीं सकते थे, तो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना करके पांडवों के यहां हस्तिनापुर चले आते थे। यस्य संततपासेन साजेसा राजधानिका तपोवनम महर्षीणाम मुद्भासत तप फलम। ये हस्तिनापुर जो है वो ऑर्डिनरी नहीं है, ये बड़े बड़े ऋषियों का तपोभूमि है, क्योंकि कृष्ण वहां आते थे और ऋषि महर्षि गण भी वहां पर डेरा डाल रहते थे। वहां प्रसाद की कमी नहीं थी, टिकट नहीं लगता था महाराज युधिष्ठिर के यहां, खूब प्रसाद था। तो वह तपोभूमि था हस्तिनापुर, जहां कृष्ण आया करते थे। हनुमान जी इस प्रकार से पांडवों के सौभाग्य को समझ कर करके घबरा करके कुछ बात बोले हैं। दो श्लोक है, मैं वही कहूंगा। कहते हैं अब नारद जी से बात हो रही है, पांडवों का बात हो रहा है, तो पांडवों के प्रति हनुमान जी अपना दृष्टि कर करके पांडवों को संबोधित कर रहे हैं। ये देखिए, हनुमान जी के पास मिलने नारद जी गए हैं, जहां पर हनुमान जी निवास करते हैं। कौन स्थान है हनुमान जी रहते हैं? किम पुरुष वर्ष, जहां हनुमान जी निवास करते हैं, वहां पर गए हैं, और वहां से हस्तिनापुर का दर्शन करते हुए ये कह रहे हैं। कहते हैं अरे प्रेम प्रमाद, अरे प्रेम पराधीना, विचार आचार वर्जिता, नियोज अथ तम दौत्यम सारथे अपि मम प्रभु। अरे पांडवगण, तुम लोग अपना सब होश हवास भूल गए हो, सब कुछ तुम लोग खो दिए हो। ये जो मेरे प्रभु हैं, इनसे तुम वह काम कराते जो नहीं कराना चाहिए। कभी सोचा है, विचारा है? हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं। देखिए यहां पर रस विचार है। पांडवगण साख्य रस में है और हनुमान जी दास्य रस में है। तो दास्य रस का जो भक्त होता है वह कृष्ण को या राम को प्रभु दिखता है। जो साख्य रस का भक्त होता है वह प्रभु को अपना सखा देखता है। तो दास्य रस तक ऐश्वर्य काम करता है, लेकिन साख्य वात्सल्य और माधुर्य में ऐश्वर्य काम नहीं करता है, केवल माधुर्य काम करता है। तो हनुमान जी कह रहे हैं, अरे प्रेम पराधीनो, तुम लोग प्रेम से हमारे प्रभु को तुम बांध लिए हो, ठीक है वहां तक ठीक है, लेकिन विचार आचार वर्जिता, तुम लोग में कोई कॉमन सेंस नहीं है क्या? आचार विचार सब तुम भूल गए हो। नियोजत अथम दौत्यम, अरे हमारे प्रभु को तो अपना नौकर बना करके दूत बना दिया, सारथे अपि अपना सारथी बना दिया। भैया जरूर तुम लोग में कुछ न कुछ गुण है, कुछ न कुछ है, तभी तो भगवान ऐसा करते हैं। कहते हैं नूनम रे पांडवा, नूनम मतलब निश्चय ही कुछ बात है भैया तुम लोगों में, रे पांडवा, हे पांडवों, तुम लोगों में जरूर कुछ बात है, बताओ तुमने क्या किया है। मंत्र औषधम वायत किंचनम, कोई मंत्र तंत्र टोना कर दिए हो क्या, या कोई दवा खिला दिए हो हमारे प्रभु को? कुछ तो जो भैया तुम लोगों ने किया है, ऐसा नहीं होता। कहते लोकोतरम भी जानिए, संसार में सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु कौन है, महामोहन मोहनम, जो महामोहन है तुम लोग उनको भी मोहित कर लिए हो। राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कहलाती है, और पांडव लोग कौन है, महामोहन मोहनम, जो सबको मोहन करने वाले हैं उनको भी पांडव लोग मोहित कर लिए हैं। और इतना कर करके हनुमान जी लगे रोने पांडवों का गुणानुवाद कर करके, और लगे नाचने। जब रोने लगे नाचने लगे तो नारद जी भी खड़ा होकर के लगे रोने और नाचने, और अपना वीणा उठाए और वहां से चलते बने। तो हनुमान जी कहता है, अरे आप अकेला मत जाओ, हम भी चलेंगे साथ में चलते हैं। इस प्रकार से वे लोग हस्तिनापुर आए। तो मैं इसी बात को यहां पर दर्शा रहा था, बतला रहा था कि वही नारद जी हैं जो नारद जी हनुमान जी से सुने थे। ए महाजनो जी न कथा सुपंथा, नारद जी एक महाजन है, विश्वपितामह दूसरे महाजन है, प्रहलाद जी तीसरे महाजन है, युधिष्ठिर भी धर्मराज ही है महाजन है। तो ये महाजनों की कथा चल रही है। तो समय तो हो गया, 10 बजे हमारा मीटिंग भी है, तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट श्लोक लेने के लिए समय नहीं बचेगा। तो आज का जो श्लोक है, उस श्लोक में नारद जी क्लियर किए हैं कि जिस पर ब्रह्म का बात मैं कर रहा हूं, जो छद्म भेष में मनुष्य लीला कर रहे हैं, वो तुम्हारे घर में ही निवास करते हैं, और तुम्हारा घर जो है ऋषि महर्षियों का तपोभूमि हो चुका है, और वह पुरुष कोई और नहीं है, साक्षात कृष्ण है। सौ वा अयम ब्रह्मा महद्वी मृगयः, बड़े बड़े ऋषि लोग जिनको खोजते रहते हैं वे तुम्हारे घर में निवास करते हैं, जो समस्त सुखों के आगार हैं, जो सबको सुख देने वाले हैं। ये तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किए, तुम्हारे प्रिय हैं, सुहृद हैं, मातुलेय खलु मातुलेय, निस्संदेह ही तुम्हारे ममेरे भाई हैं। ये बड़े पूजनीय हैं, निर्देशक हैं तथा गुरु हैं। और अंत में च शब्द आया है, च का मतलब और सब, जो मैंने पहले वर्णन कर लिया, सारथी हैं, दूत हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से यह इस अध्याय का कल का जो श्लोक है वो अंतिम श्लोक होगा। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी प्रसंगार देंगे, और बाद में 8वां स्कंद शुरू होगा, जो है मनवंतर। मनवंतर मतलब सद्धर्मा। करणीय क्या है? धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? प्रश्न होना चाहिए। हाँ, माइक 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 नहीं है क्या? बोलिए, आपका आवाज ऐसे ही जोर है। माइक में बोलेंगे, बोल दीजिए।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप बताए कि भगवान श्री कृष्ण पांडव के सुहृद सुहृद सखा सब कुछ थे, और इतना होने के बावजूद भी पांडव के जो द्रौपदी के पांच बेटे मारे गए, और सुभद्रा उनकी सगे बहन थी, उनका भी बेटा एकलौता बेटा अभिमन्यु था, वो भी मारा गया, तो भगवान तो चाहे तो रक्षा कर सकते थे।
अब भगवान नहीं किया था, पटिशन दीजिए, स्ट्राइक कीजिए, भगवान करना चाहिए। देखिए, भगवान किसी के इंडिपेंडेंस में इंटरफियर नहीं करते हैं, पहला नंबर। भगवान पांडवों का रक्षा किए, अब खानदान की रक्षा करने का थोड़ा भार ले लिए थे, पांडवों का रक्षा किए एक बार, ठीक है। ये लोग वैसे ही मरने वाले थे, उनका कर्म था, उतने ही दिन के लिए आए थे, तो भगवान उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, इसलिए भगवान अभिमन्यु को बचा नहीं पाए। इस महाभारत में वर्णन किया गया है, उत्तरा को भगवान संतावना दिए हैं, बतलाए हैं, सुभद्रा को बतलाए हैं अभिमन्यु के जीवनी के विषय में, कि उतना ही दिन तक था। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा। ये पांडव लोग भगवान का भक्त है, लेकिन जैसे कौरव लोग भी उधर थे, पांडव लोग थे, पितामह भीष्म दोनों के व्यक्ति थे, पांडव को स्पेशल कृपा उनको क्या कोई साधु संत मिला? न उसके पहले के जन्म था, न उनका पूर्व कर्म था, क्या उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि कैसे हुआ ऐसा?
भगवान परतंत्र नहीं है, भगवान स्वतंत्र हैं। किस पर कैसे कृपा करना उनका काम है, और मुफ्त में नहीं करते हैं। पांडवों ने भी किया कृष्ण के लिए सब कुछ, क्या नहीं किया? कृष्ण उनके सर्वस्व थे पांडवों के। भगवान गीता में ही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
पांडव सब किए हैं, लेकिन उनको पिछले बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? वो पिछले का क्या कर्म था उनका?
ऐसा तो कहीं कुछ वर्णन नहीं है पांडवों के विषय में क्या कर्म था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्म के पुत्र थे, अर्जुन इंद्र के अंश थे, भीम वायु, हनुमान शंकर इत्यादि के अंश थे, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार थे, देवता थे। लेकिन कहीं श्राप हुआ हो या कहीं कुछ हुआ हो, मुझे पता नहीं, आप किसी को पता हो बता सकता है? असीम महाराज पता है कि पांडव के पूर्व जन्म में क्या थे? पांडव पूर्व जन्म में थे ही नहीं, ये तो पहला ही जन्म था उनका, पहले जन्म कुछ नहीं था। एनीवे, आई हैव 10 o'clock मीटिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, आई एम गोइंग। ग्रंथराष्ट्र भागवतम की चाह शिल्पोपाध्याय।